तो बहुत लोग नहीं जानते हैं भगवान चैतन्य की अवधारणा, जितने भगवान राम प्रसिद्ध है, जितने भगवान श्री कृष्ण प्रसिद्ध है, उतने कलयुग में पतित जीवों के उद्धार के लिए जिन्होंने अवतार ग्रहण किया वो श्री चैतन्य महाप्रभु, उतने लोगों को पता नहीं है। ये और एक ऐसा लक्षण है कि ये बहुत अधम लोगों के लिए कलयुग का ऐसा वातावरण है जहां पे भगवान कौन है ये भी लोगों को पता नहीं। तो श्रीलम प्रभुपाद और गुरु शिष्य परंपरा की वजह से कम हमें पता तो है कि इस युग के युग धर्म के प्रवर्तक जो साधु का उद्धार करने के लिए आए थे, जो दुष्टुति लोगों को भी उद्धार करने के लिए आए थे, वो साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने दिया हुआ है कि भले ही व्यक्ति कितना ही डिग्रीज, मतलब बहुत सारे उसके पास बहुत सारी विद्याएं हो, बहुत प्रतिभाशाली हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ऊपर ऊपर से गुण संपन्न हो, बहुत आकर्षक हो, बहुत ही विद्वान हो, फिर भी अगर वो, यहां पे साफ लिखा है, यदि कोई शत प्रतिशत कृष्ण भावना मन में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। और इससे विपरीत दुष्टता उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना की परवाह नहीं करते, ऐसे दुष्टता या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वो सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसका मतलब बहुत साफ है, भले ही हम माने या ना माने, हम बुद्धिमान तभी कहलाते हैं शास्त्रों के तात्पर्य से जब हम सबसे उच्च व्यक्ति का पता जानते हैं कौन है, भगवान कौन है, ये जब हम जानते हैं तभी हम सही मायने में बुद्धिमान कहलाते हैं। इसी का भागवतम में भी प्रमाण आता है जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्लोक आता है जो कहता है कि कृष्ण वर्ण त्रिशा कृष्ण सांगो पांगास्त्र पार्षद यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही यजति ही सुमेधसा मेधानुत बुद्धि। सुमेधसा मतलब सात्विक बुद्धि, बुद्धि के भी प्रकार, बुद्धिमत्ता के प्रकार, सत्व गुण की बुद्धि, रजोगुण की बुद्धि, तमोगुण की बुद्धि, ये भगवद गीता में हम देखते हैं। तो उसमें कहा गया है कि जो धर्म को अधर्म को बताती है और अधर्म को धर्म समझती है, ऐसी बुद्धि तामसिक बुद्धि है। इसका मतलब जो भगवान है उसको भगवान ना मानना और जो भगवान नहीं है उनको भगवान मानना। तो कलयुग में हम ये बहुत देखते हैं कि बहुत सारे भगवान प्रकट हो गए, तो लोग कहते हैं कि ये कल्कि भगवान अवतरित हो गए, ये भगवान है, ये व्यक्ति भगवान है। कोई कहता है कि वो कल्कि भगवान नहीं, ये कल्कि भगवान है। कोई बोलता है कि नहीं, मेरे एक गुरु है वही भगवान है, और वो गुरु उसको कहते हैं कि तुम भी भगवान हो, ये भी भगवान है, कुत्ता भी भगवान है, सब भगवान है। तो इसको लोग बोलते हैं अधर्म को धर्म मानना। जो वर्णन आता है कि भगवान कौन है, कैसे अवतरित होते हैं, क्या कार्य करते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उन सब का विचार न करते हुए किसी एक व्यक्ति विशेष को बिना किसी आधार पे थोड़े से अपने क्षुल्लक बुद्धि की तमोगुणी उपज से लोग कहते हैं कि ये भगवान है, वो भगवान, मैं भगवान, सब भगवान, तो इसे कहते हैं अधर्म। अधर्म को धर्म कहते हैं। और धर्म को अधर्म क्यों जाते हो मंदिर में, मंदिर में क्या भगवान है, मूर्ति में क्या भगवान है, भगवान क्या ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, भगवान तो ऐसे है वैसे है, ऐसे हो ही नहीं सकते हैं, ये आपके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ही ये चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसका क्या प्रमाण क्या है? ये सब भगवान को भगवान ना मानना या सही धर्म को धर्म ना मानना। धर्म क्या होता है इसकी व्याख्या वैदिक शास्त्रों में ग्रंथों में की है। क्या है धर्म का मतलब क्या है? बहुत बार कोई बहुत मूलभूत व्याख्या होती है, वो व्याख्या बताना बहुत मुश्किल होता है। लोग धर्म के बारे में समझते हैं कि मैं धार्मिक हूं, मैं धर्म का वर्णन करता हूं, पर धर्म की व्याख्या क्या है ये पूछा तो हर एक की व्याख्या अलग अलग आएगी। तो जब तक वो धर्म की व्याख्या हर एक की अलग अलग है उसका मतलब वो व्याख्या रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म की व्याख्या की है। तो धर्म की सही व्याख्या क्या है ये कौन कर सकता है, ये व्याख्या कौन बता सकता है? तो ये व्याख्या भी शास्त्रों के आधार पर हम जानते हैं कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान ने जो कहा है वो धर्म है। क्यों? मराठी में बोलते मी सांगेन की पूर्व दिशा, सूर्य को क्यों हुआ है सब कुछ मुझे, मतलब सूरज जहां उतना है उतने दो, मैं बताता हूं ये पूर्व दिशा है ये पूर्व दिशा है। ये सत्य सिर्फ भगवान के बारे में हमारे बारे में, भगवान अगर बोलेंगे आज से वो ये पूर्व दिशा लेंगे आज से वो पूर्व दिशा तो बदल जाएगा पूर्व दिशा, सूरज उधर से उग सकता है उगेगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है कि सूर्य भगवान के भय से उदित होता है। सूर्य चंद्र आदि सारे ग्रह तारे भगवान की शक्ति से चलायमान होते हैं, उनकी पूरी जो कक्षा है वो भगवान निर्णय करते हैं। गामा विश्वच भूतानि धारयाम्यहं ओजसा, जिस शक्ति से सारे ग्रह तारे अपने मंडल में घूम रहे हैं वो शक्ति मैं हूं भगवान, तो वो शक्ति भगवान है। तो जहां शक्ति है वहां खिंचाव है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो है वो ऐसे नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ऊपर उठा दिया है नीचे ला दिया, क्योंकि भगवान चाहते हैं भगवान वहां से खींचते हैं। वैसे ही जो ग्रहों की अपने मंडल में घूमने की जो क्षमता है या जिस शक्ति से वो घूमते हैं वो भगवान की शक्ति है। भगवद्गीता में साफ कहा गया है कि ब्रह्मांड में जो ग्रह तारों को एक साथ करती है वो शक्ति मैं हूं। तो इस प्रकार से भगवान जो करते हैं कहते हैं वही धर्म है, धर्मों को साक्षात भगवत प्रणीत है। धर्म की व्याख्या समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्थिति काल व्यक्ति परिस्थिति सब कुछ बदलता रहता है। जैसे कि कलयुग में आयुर्मान बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति 100 साल तक जी सकता है, बहुत हो गया 100 साल। वैसे पुराने जमाने में इससे पहले के युग में व्यक्ति 1000 साल जी सकता था, उससे पहले 10,000 साल जी सकता था, 1,00,000 साल जी सकता था, तो उसका प्लानिंग 1,00,000 का अलग होगा, अभी का 100 साल का अलग होगा, अभी की परिस्थिति अलग है, तब की बुद्धि अलग थी। एक बार श्रवण करने से पूरी तरह से ध्यान में आता था, पूरी तरह से समझ जाते थे, पूरी तरह से याद हो जाता। अगर हम भागवत पुराण को देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें इतना वर्णन, इतना डिटेल में वर्णन है चीजों का कि आश्चर्य होता है कि इतना सारा एक व्यक्ति इतना सारा ज्ञान कैसे हो सकता है उसे। सुखदेव गोस्वामी जी महाराज जो भागवत पुराण में वर्णन करते हैं वंशावली, वंशावली मतलब जो वंश हुए हैं अलग अलग, जब से ब्रह्मा जी एज एन इंजीनियर जब से उनका वो प्रकट हुए उनके बाद कौन कौन कैसे प्रकट हुए, कौन से फैमिली ट्री में कौन जन्मा, उनका क्या हुआ, इसका पूरा वर्णन सुखदेव गोस्वामी महाराज करते हैं। उतना ही नहीं वो पूरे ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं, हर एक छोटे छोटे महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन वहां पे आता है। तो ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति इतना सारा कैसे बोल सकता है, इतना सारा कैसे ध्यान में रख सकता है। तो ये 5000 साल पूर्व की बात है, तो तभी की बुद्धि अलग थी। तब गुरु शिष्य परंपरा में सिर्फ शिष्य को एक बार बताओ तो वो समझ जाता था, सीख जाता था। हम सालों साल नहीं पढ़ के भी नहीं सीख पाते, नहीं समझ पाते। तो परिस्थिति अलग है, व्यक्ति अलग है, क्षमता अलग है। यहाँ पे धर्म के पालन करने की अनुकूलता बहुत कम है, बहुत प्रतिकूल परिस्थिति है। तो इसलिए हर एक युग में भगवान उस काल स्थिति के हिसाब से युग धर्म का प्रचार करते। तो हालांकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो युग धर्म बताया है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, वो मार्ग ऐसा नहीं है सिर्फ कलयुग के लिए। हरिनाम संकीर्तन या भगवान का नाम, ये हमेशा ही कालातीत परिपूर्ण भगवान की शक्ति प्रकट करने वाला एक साधन है। साक्षात भगवान है, भगवान का नाम ऐसा नहीं कि कलयुग में भगवान का नाम साक्षात भगवान बन गया, ऐसा नहीं। भगवान का नाम हमेशा ही भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट नॉट रिलेटिव, भगवान पूर्ण शक्तिमान है और अपने सारे शक्तियों से अभिन्न है। तो इसलिए भगवान का नाम जो है वो हमेशा ही धर्म रहा है। परंतु भगवान का नाम लेने के लिए बहुत समय पहले था, बहुत विशुद्ध होके अलग अलग प्रक्रिया से जाके योग के मार्ग से बहुत ज्यादा शुद्धता प्राप्त करके व्यक्ति भगवान नाम में पूरी तरह से ध्यानस्थ ध्यानमग्न हो सकता था। इस युग में कोई भी योग पद्धति अनुसरण के लिए सामान्य व्यक्ति के लिए हाथ से बाहर है, बहुत मुश्किल करना है। और उसी प्रकार से भगवान का नाम भी सही सोचे, सही में साधना जो करते हैं उनको पता है कि हरि नाम की साधना पक्की, शुद्ध हरि नाम लेना ये कोई मतलब बहुत जोक नहीं है, जोक नहीं है। शुद्ध हरि नाम लेना, भगवान का विशुद्ध नाम लेना, ऐसा कहा गया है। भगवान नाम के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, जो युग धर्म है इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण हम देखेंगे। परंतु ऐसा कोई व्यक्ति सोच सकता है कि हरिनाम की विधि क्यों दी है भगवान चैतन्य ने? अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करें तो कई संदर्भों में ये हरिनाम की महिमा का वर्णन आया है, जहां पे ब्रह्मा जी को नारद जी पूछते हैं कि कलयुग में तो सबसे मतलब ऐसा कहते हैं कि सब साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ साधन हरि नाम का जप है। तो ये सर्वश्रेष्ठ साधन, ये मंत्र या महामंत्र कलयुग में पतित बद्ध जीवों को कैसे प्राप्त हो जाए, क्योंकि सबसे उच्च वस्तु जो होती है वो सहज सुलभता से प्राप्त नहीं होती है। हम देखेंगे सबसे मौल्यवान वस्तु क्या है, सबसे मौल्यवान भौतिक वस्तु हीरा है। हीरा ऐसे ही पड़ा रहता है क्या, कहीं पर भी मिल जाता है, नहीं मिलता। तो ऐसा कैसे हो गया कि सर्वश्रेष्ठ साधना का जो तंत्र है, जो मंत्र है, हरिनाम है, यज्ञानाम जप यज्ञ, भगवान नाम का जप है, वो जब कलयुग में बद्ध जीवों को कैसे मिल गया, इतनी चांदी कैसे हो गई? ये प्रश्न है, क्योंकि सिर्फ हरिनाम से सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये हरिनाम कैसे मिल गया? पहले अभी भी बहुत सारे गुरु होते हैं, वो मंत्र देते हैं, बोलते किसी को मत बता रहे, गुप्त गुप्त जप कर। तो ये हरिनाम जो कि ऐसा कहा गया है कि नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, इससे परे कोई उपाय सारे वेदों में ढूंढ के नहीं मिलेगा। वेदों का सर्वोच्च गमन बोलते हैं मराठी में, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो हरिनाम है। तो ये हरिनाम ऐसे कैसे मिल गया सबको? तो ऐसा कब होता है? जैसे अभी आजकल वो वायरस फैला हुआ है, लोग इतने सारे मर रहे हैं, उनके पास कोई भी दवाई नहीं, बहुत लोग मर रहे हैं उस वायरस, बहुत जानलेवा बीमारी कहलाती है, एपिडेमिक। साथ सब जब वहां पे चाइना में सब जगह पे फैला हुआ है, सुन रहे हैं रोज। तो ऐसे वक्त जब आदमी लगभग ऐसी बीमारी से मर भी जाता है, तब अगर कोई कहे कि हमारे पास इस बीमारी का इलाज है, हमारे पास इस बीमारी का इलाज है, तो क्या सर्वश्रेष्ठ होगा? इलाज को तुरंत करना बिना देखे, ऐसा हो अगर कि वो इलाज सबसे महंगी चीज से बनता हो, बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब बहुत कम है ऐसी मौल्यवान औषधि से वो बनता हो, तो मरने वाले व्यक्ति को वो मौल्यवान औषधि बहुत मौल्यवान है करके तुरंत देनी चाहिए कि देर कर देनी चाहिए? तो इस भाव से कि कलयुग में जीवों के पास बिल्कुल ही समय नहीं है, बिल्कुल ही बुद्धिमत्ता नहीं है, बिल्कुल ही कोई लायकी नहीं है, बिल्कुल ही पतित अधम जीवन है, पूरी तरह से प्रतिकूलता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, इतने सारे रोग हैं, कभी भी व्यक्ति आज है कल नहीं है। मैं बहुत बार उदाहरण मेरे आमने सामने मेरे ऑफिस में, मेरे सोशल सर्कल में, फैमिली सर्कल में, हर जगह पे देखता हूं, आदमी सही में कभी भी मर सकता है, कभी भी गर्भ में ही बालक मर जाता है, 5-6 दिन की बालिका के साथ बलात्कार हो जाता है, कभी मैंने पढ़ा, मर जाती है, रस्ते में खेलते खेलते कुत्ते खा जाते हैं बच्चों को, कोई तो बीमारी हो जाती है अचानक से ऑफिस में जाता है आदमी, शाम को लौट के नहीं आता है, हुआ है मेरे रिलेटिव के साथ, इसलिए 40 साल का बड़े आईटी कंपनी में मैनेजर था, उनकी पत्नी ने बोला मुझे पता नहीं था कि आज ऑफिस जाएंगे और लौट के वापस नहीं आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सर्वोच्च औषधि देने के सिवाय कुछ बचा नहीं है, क्या करोगे? ना ध्यान लगा सकते हैं, ना योग मार्ग, युक्ताहार विहार से युक्त ज्येष्ठ से कर्मसु युक्त स्वप्न संस्कृत सुनते सुनते ही सो जाते हैं, सुसंस्कृत तो है ही नहीं, संस्कृत तो विलुप्त हो गई, तो ज्ञान लेना बहुत मुश्किल हो गया, ज्ञान लेके भी भूल जाना बहुत आसान हो गया, आज सुना कर भूल गया, कुछ दिनों पहले बहुत अच्छा प्रवचन सुना, क्या सुना कुछ भी याद नहीं, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे वक्त क्या सबसे सिंपल और सबसे प्रभावी सर्वोच्च क्या है जो उद्धार कर सकता है, ऐसा प्रश्न नारद जी ने पूछा, और उसके उत्तर में ब्रह्मदेव कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नाम कलिकल्मषनाशनम् नाथ परतरोपायः सर्ववेदेषु कृष्णः। वेदों में कहीं पे भी खंगाल के निकालो, कुछ भी करो, उल्टा पुल्टा कहीं से भी, आगे से पढ़ो, पीछे से पढ़ो, पीछे से पढ़ो, इस संत को पूछो, उस संत को पूछो, शिष्य परंपरा में जाओ, शिष्य परंपरा में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी ढूंढो, कहीं पे भी देखो, किसी भी अथॉरिटी को पूछो, इससे बड़ा उपाय कोई भी नहीं है, इससे बड़ा उपाय हरे कृष्ण महामंत्र से बड़ा उपाय कोई भी नहीं। कौन कह रहा है? ब्रह्मदेव इंजीनियर कह रहे, इस जगत के इंजीनियर, अगर एक लाइफ दिया हो, एक कोई यंत्र को लाइफ दिया हो, ये लाइफ के बाद वो उसका गारंटी वारंटी सब खत्म, एक्सपायरी डेट आ गया उसका, एक्सपायरी डेट के बाद उसका चल रहा है, कब तक चल रहा है, उसके बाद उसका क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो अभी एक्सपायरी डेट हो गया है, कलयुग मतलब एक्सपायरी डेट हो गया, अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है, आदमी अच्छा खासा भला, धर्म के मार्ग वाला भी आदमी अचानक से अधपतित हो जाता है, अपने घरों से भ्रष्ट हो जाते, अपनी चेतना से भ्रष्ट हो जाते, एक गुस्से के मोमेंट में बोलते क्षण में व्यक्ति का सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, हो सकता है। तो एक्सपायरी डेट हो चुका है, अपने शरीर का भी एक्सपायरी डेट ऑलरेडी है और उसमें स्थूल सूक्ष्म सब कुछ है। तो ऐसे वक्त क्या चलेगा, वो है सिर्फ हरिनाम चलेगा। ऐसे जिसने एक्सपायरी डेट बनाया, जिसको सब पता है क्या होने वाले हैं, और व्यथा से करुणा से ये चर्चा हो रही, क्या होगा ऐसे भयानक वक्त क्या होगा। तो यहां पे जैसे कहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तुरंत समझ जाएगा परिस्थिति क्या है कि नहीं। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो, बुद्धिमान हो, तो आपकी परख कैसे होगी कि आप आपके क्षेत्र में बहुत बुद्धिमान हो, कैसे पता चलेगा? चाणक्ष इमरजेंसी में सबको आपकी याद आएगा, ये बच्चा है, ये एक्सपर्ट है कि नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को इमरजेंसी में सब कुछ, इमरजेंसी में भी सब कुछ ज्ञान पूरी तरह से पता होता है, उसका स्किल परफेक्ट होता है। तो उसी प्रकार कलयुग में जो एक्सपर्ट है, बुद्धिमान है, वो तुरंत समझ जाता है ये भगवान है, तुरंत समझ जाता है ये बराबर मान है, तुरंत समझ जाता है ये फ्रॉड है, भले ही उसकी बुद्धि कलयुग के हिसाब से मतलब बाकी के युगों के हिसाब से बहुत कम है, फिर भी कलयुग में जो एक्सपर्ट है वो कैसा जाना जाता है, जो भगवान चैतन्य को समझ जाता है। ऐसे भागवतम क्या कहता है, भागवतम यजति ही सुमेधसा कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्ण, कृष्ण के साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार, परंतु कृष्ण के जैसा रंग नहीं, गोल्डन फॉर्म भगवान चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण का रंग काला सावा, भगवान चैतन्य का रंग एकदम तप्त कांचन, मतलब पिघले हुए सोने जैसा दीप्तिमान, प्रकाशमान, सुंदर। भगवान चैतन्य यहां पे हम देखते हैं सुंदर उनका विग्रह। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को देख के तुरंत बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाते हैं ये है। तो भगवान चैतन्य, मुझे वो अपना बैक टू गॉड मैगजीन है राहुल देवाल जी का, उसका वो जो ऊपर पोस्टर है उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु दिखाया है, अवतरित हो गए, वो याद आता है भगवान चैतन्य महाप्रभु का, जब भी हम डिस्कशन करते हैं उनके अवतरण का। तो यहाँ पे ऐसे ही कहा गया, यहाँ पे जो वर्णन आता है कि एक आध्यात्मिक जगत है, वो आध्यात्मिक जगत नित्य स्थित रहता है, वो जन्म मृत्यु के परे है, यद्वर्तनते तद्धाम परम मोह, जहां पे जाने के बाद कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फिर से लौट के नहीं आता है, ऐसी जगह को भगवान अपना धाम कहते हैं, नित्य धाम। तो अवतार जब होता है, यहां पे लिखा है अवतार जब होता है, तो कहां से अवतार, अवतरित होना, पधारिए आप अवतरित हो गए घर में, कभी कभी हम बोलते लेट आने वाला बेटा वाले बोलते हाँ हो गया आपका अवतार, धन्य हो गया। तो अवतार होना मतलब है कहीं पे, वहां से आ गए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक जगत से आते हैं, किस परिस्थिति में आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन श्री चैतन्य भागवत इस ग्रंथ में आता है। तो हम थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर भगवान की लीला है, बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें पढ़नी चाहिए। अभी भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतरण का दिवस नजदीक आ रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा उनके जन्म के पहले कैसी परिस्थिति थी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, पहले तो इस पुस्तक में भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से पहले श्रीमान नित्यानंद प्रभु के अवतरण के बारे में बताया है, और हमने कुछ दिनों पहले नित्यानंद त्रयोदशी का उत्सव मनाया था। तो यहाँ पे चैतन्य भागवत में जब यही शुरुआत, यही श्लोक जो आज हमने देखा, उसके पहले वाला श्लोक जो है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति मानवः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। अधर्म का उच्चाटन करने के लिए, निर्मूलन करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं का उद्धार करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। तो जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य दिन ब दिन बढ़ते जाता है, क्या हम देख रहे हैं ऐसा? अधर्म का प्राबल्य बढ़ते जा रहा है, धर्म की हानि हो रही है। तो ऐसे वक्त सब साधु जनों का रक्षण करने के लिए और सब दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान के पास ब्रह्मदेव और अन्य देवता हमेशा जाते हैं मनाने के लिए। हम कृष्ण लीला में भी जानते हैं कि सारे देवी देवता, पृथ्वी माता, वो भार सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो ब्रह्मदेव के साथ, देवी देवताओं के साथ भगवान के यहाँ प्रार्थना करने के लिए, अवतार के लिए जाते हैं। हमेशा ऐसे हर एक अवतार में हम देखते हैं कि कोई तो भगवान को बुलाता है, इसलिए भगवान आते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को कौन बुलाता है, इसका वर्णन आगे आ रहा है। कलियुग में धर्म हरिनाम संकीर्तन है और जिसकी स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान शची माता के पुत्र में प्रकट होते हैं। नाम संकीर्तन ही सबसे सर्वोच्च सत्य तत्व है। इसे, इस सत्य को प्रस्थापित करने के लिए गौरचंद्र रूप में भगवान अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है, हे राजन, इस प्रकार द्वापर युग में लोग ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके कलयुग में भी शास्त्रों के विविध नियमों का पालन करने करते हुए भगवान की आराधना करते हैं, इसके बारे में मुझे बताओ। ये कहां का श्लोक है? भागवत के 11वें स्कंध का। जिसके बाद इस प्रश्न के उत्तर में जो श्लोक हमने देखा, कृष्ण वर्णन तुषा कृष्ण, वो श्लोक कहा गया है। और उसके बाद भगवान चैतन्य नारायण कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के एकमेव सर्वोच्च युद्ध धर्म का प्रकाश करने के लिए अवतरित होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बहुत इस मुद्दे पर कहते थे कि कलयुग में कोई भी दूसरा धर्म नहीं है। अगर कोई कहता है कि हरिनाम छोड़ के कोई धर्म है, तो वो चैतन्य महाप्रभु ने जो धर्म प्रस्थापित किया है, भगवान साक्षात भगवान ने जो बोला है वो धर्म है, उसे छोड़ के कुछ और करना ये बराबर नहीं है, इसको धर्म नहीं कहेंगे। इसीलिए कलयुग युग धर्म हरिनाम संकीर्तन प्रस्थापित करने के लिए पुरुषोत्तम भगवान अकेले नहीं आते, अपने पार्षदों के साथ आते हैं। हमेशा ही हम राम जन्म में देखते हैं देवी देवताओं को अपने पार्षदों को भगवान पहले जाओ बोलते, तुम मरकट की योनी में जन्म लो, अलग अलग बड़े 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 वानर वहां पहले ही जन्म ले रहे थे भगवान के पार्षद करके। इसी प्रकार भगवान चैतन्य भी, भगवान कृष्ण के भी पार्षद पहले ही आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के भी पार्षद पहले ही आते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग स्थानों पे भगवान के अलग अलग पार्षद पहले ही भगवान के अवतरण से पहले ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि भगवान के पार्षद जो अलग अलग गांवों में प्रकट हुए, ऐसा प्रश्न किया गया है कि ये पापमय स्थान पे क्यों प्रकट हुए? खुद भगवान चैतन्य महाप्रभु भी गंगा के किनारे नवद्वीप में प्रकट हुए, तो उनके सारे पार्षदगण बहुत दूर, गंगा से दूर कहीं कहीं जहां पे बहुत पापी लोग रहते हैं। इतना तक कहा गया है कि जिनके घर में पापी लोग ही है, जिनके माता पिता भी बहुत बड़े कोई संत नहीं है, ऐसे घरों में चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने जन्म क्यों लिया? तो यहां पे कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद इतने शक्तिशाली है कि वो ऐसी पापी भूमि को भी पावन कर देते। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, मतलब जो व्यक्ति होती है, व्यक्ति संत व्यक्ति होती है, जो महान शुद्ध विशुद्ध भक्त भगवान के पार्षद होते हैं, वो जहां पे अवतार लेते हैं उस भूमि को परम पवित्र कर देते हैं। इतना ही नहीं, उस भूमि में रहने वाले लोग उस घर में जहां पे उनका जन्म हुआ है, उनका अवतार हुआ है, उस घर के सारे लोगों का वो उद्धार कर देते हैं, उनका पूरा कुल पवित्र कर देते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण है, हमने देखा भगवद गीता के तात्पर्य में भी आज के श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं है, दुष्टों का भी उद्धार करने के लिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु की ये बहुत बहुत करुणामयी क्वालिटी बोलते हैं, गुण है, बहुत ही करुणामयी है भगवान चैतन्य महाप्रभु, करुणा अवतार कहते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद हमेशा सारे पापी जीवों का भी उद्धार करते हैं। यहां पे कहा गया है कि अलग अलग जगहों पे भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद आए, अवतरित हुए, फिर वो सब नवद्वीप में भगवान के साथ लीला करने के लिए इकट्ठे हो गए। तो यहां पे नवद्वीप जहां पे भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, वहां की परिस्थिति का बहुत सुंदर वर्णन आ रहा है, और ये परिस्थिति हमें आज भी हमारे आजूबाजू में साफ तौर पर दिखती है। चैतन्य महाप्रभु का अवतरण सिर्फ नवद्वीप धाम में हुआ इतने सालों पहले, 400, 450, 500 साल पहले हुआ, ऐसा नहीं है कि तब अवतार हुआ और अभी अवतार नहीं हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु का अवतार होने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, इसका वर्णन हम यहां पे देख सकते हैं। तो हमारे हृदय में, हमारे आज की परिस्थिति में भगवान चैतन्य कैसे प्रकट होंगे, इसका गूढ़ रहस्य इस परिस्थिति में हम देख सकते हैं। तो यहां पे देखा है कि नवद्वीप का समृद्धि का क्या वर्णन किया जाए। नवद्वीप धाम जो था वहां पे हर एक घाट पे एक ही साथ लाखों व्यक्ति स्नान कर सकते थे। इतनी बड़ी गंगा नदी, इतना बड़ा पात्र, इतनी सुंदरता, क्योंकि पहले अभी भी नदियां गटर जैसी हो तो वो शहर बहुत समृद्ध कहने के लिए लायक नहीं लगता है। कम से कम जो वैदिक सात्विक बुद्धि धारण करते हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि जहां पे गटर जैसी नदियां हैं वो बहुत समृद्ध प्रदेश, बहुत बड़ी नदियां हैं, हरा भरा पूरा खेती है, तो उसे समृद्ध कहेंगे। देवी सरस्वती की कृपा से बालक, करुण, वृद्ध, ऐसे तीनों प्रकार के लक्षावधि सुशिक्षित विद्वान नवद्वीप में रहते थे। तो देवी सरस्वती की कृपा मतलब एक हम आगे जाके एक कश्मीर, केशव कश्मीरी पंडित का लीला देख रहे हैं, तो केशव कश्मीरी के बारे में ऐसा कहा गया है वहां पे कि साक्षात सरस्वती देवी का उन्हें वरदान प्राप्त होता, तो वो एक ही क्षण में जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गंगा जी का वर्णन करने वाली कविता कहने के लिए बोला तो एक ही क्षण में पलक झपकते झपकते पूरा ओरिजिनल नया संस्कृत में अस्खलित गंगा माता का वर्णन केशव कश्मीरी ने किया। तो वो सरस्वती की कृपा। हम देखते हैं कभी कभी कोई बहुत सुंदर गाता है, बहुत विद्वान है, तो लोग बोलते हैं जो वैदिक सिद्धांत को समझ रहे होते सरस्वती जी की कृपा है, ऐसा हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से सारे लोगों के ऊपर कृपा थी। नवद्वीप में सुशिक्षित विद्वान लोग बहुत थे, सब विद्वज्जन गर्व से खुद को महान शिक्षक समझते थे। एक छोटा सा बालक भी बड़े बड़े भट्टाचार्यों के साथ बहुत उद्धट, क्या बोलते हैं उसको, उद्दामता के साथ वाद विवाद करता था। तो विविध प्रदेशों में, विविध प्रदेशों से लोग नवद्वीप में आते थे और वहां पे आने के बाद उन्हें सीखने में बहुत रुचि आने लगती थी। तो लक्ष्मी देवी की केवल कृपा कटाक्ष से सब लोग सुख से रहते थे, परंतु अपना अमूल्य काल वो केवल व्यावहारिक तथा विषयी रसों में वेस्ट करते। तो यहां पे टर्न आया है, भले ही सरस्वती की कृपा हो जाए, भले ही लक्ष्मी की कृपा हो जाए, सामान्यतः हम देखते हैं कि लोग जो धार्मिक होते हैं धार्मिकता अपनी कैसे धारण करके रखते हैं, क्या उनकी संकल्पना क्या होती है धार्मिकता की? बहुत विद्वत्तापूर्ण होना, बहुत ज्ञानी होना, बहुत ज्ञान लेना और बहुत पैसा कमाना, बहुत समृद्धि, मटेरियल बिलोंगिंग्स, मतलब बहुत साधन सामग्री का होना और इस प्रकार से सुखी रहना। यहां पे हम जब चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की बैकग्राउंड देख रहे हैं तो यहां पे इन चीजों को क्या कहा गया है? वेस्टेज ऑफ लाइफ, वेस्टेज ऑफ टाइम। एक बार श्रील प्रभुपाद ट्रेन से जा रहे थे तो भारत में ऐसा होता है कि साधु संत सन्यासी वेश में किसी को देखते हैं सामान्य लोग तो जाके तुरंत पैर पड़ते हैं, पैर छू लेते हैं, उनके आशीर्वाद को आशीर्वाद करते। तो श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद मांगने वाले लोगों को श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ मैं आशीर्वाद दूंगा आपको, पर आपको चाहिए क्या ऐसा आशीर्वाद? ये देखो मेरा आशीर्वाद। उनके आजूबाजू में जो उनके शिष्य थे पूरा मुंडन करके, शिखा रख के, पूरा सर्वसंग परित्याग करके ब्रह्मचारी बैठे हुए, सब त्याग करके, सब लक्ष्मी का त्याग करके बैठे, चलेगा ऐसा आशीर्वाद? श्रील प्रभुपाद ने पूछा। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होने के लिए क्या भावना होनी चाहिए? ये भावना होनी चाहिए, भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम की भक्तिमय सेवा में किसी को भी कोई रुचि नहीं है। कलयुग के आरंभ से ही ऐसे प्रकार, इस प्रकार की उदासीनता बढ़ते जा रही थी। हम देखते हैं आज भी, हम भी थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं फिर भी हमारी उदासीनता हमें पकड़ लेती है। हम माला करते वक्त भी शुरू करते हैं, संकल्प ले लेते हैं करेंगे, माला एक माला दो माला होते होते उदासीनता बढ़ती जाती है। या फिर कुछ लोग आते हैं मंदिर में, बहुत प्रेरित होते हैं, घर जाते जाते उदासीन हो जाते हैं। या फिर घर में भी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, इतर लोगों के संग में आके उदासीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिकूलता इतनी ज्यादा है कलयुग में, ये प्रतिकूलता, उदासीनता भक्ति की प्रति इतनी ज्यादा है। कोई अगर भक्त बन जाए तो लोग सोचते रहते क्या, कोई अगर बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाए, बहुत पैसा कमा ले, पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट करे, अमेरिका में जाके पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा है, वाह वाह। अगर कोई मंदिर में जाके भक्त बन रहा है तो लोग उदासीन होते क्या अपना लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनके लिए कभी अवतरित नहीं होंगे। ऐसे लोग जो उदासीन हैं, बिल्कुल ही उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लोग सब लोग रात भर जाग के दुर्गा देवी के गीत गाने में, गाने को ही धर्म का कार्य समझते। तो ये धर्म को अधर्म को धर्म समझना, ऐसा देखते हैं हम लोग बहुत सारे लोग। खास करके कोई भक्त बनने लगता है ना तो मैंने देखा उसके रिलेटिव अपने अपने अलग अलग धर्म का पालन बहुत स्ट्रिक्टली करने लगे ताकि ये प्रचार न कर जाए मेरे को आगे, मेरा धर्म है इधर तो अपना। इस प्रकार से लोग उदासीनता का ये दूसरा रूप है, जहां पे लोग ऐसे धर्म को अपनाना चाहते हैं जो उनके डिक्टेशन के हिसाब से हो, उनकी इच्छाओं के हिसाब से। हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए जहां पे बहुत सारे नियम हो, हमें ऐसा धर्म चाहिए जिसमें हमारे नियम से सब चले। तो ऐसे कई लोग सर्व देवता मनसा की पूजा करने में बहुत अभिमान रखते थे, कई लोग देवी देवताओं की मूर्ति बनाने में बहुत सारी संपत्ति वेस्ट करते थे, ऐसा भी है। बेटे बेटियों की शादियों में बहुत सारा खर्चा करके संपत्ति का पूरा नाश कर देते थे। अभी हम देखते हैं लोग बहुत बड़ी शादी करना, बहुत खर्चा करना, ये गोलफ नहीं करते हैं। बेटी की शादी में खर्चा करते हैं, बेटी की शादी में खर्चा करते हैं, तो इसे वेस्ट कहा है। इस तरह से लोग अपना बहुमूल्य काल ऐसे ही व्यतीत करते हैं, वेस्ट। शास्त्र मीमांसक न्याय शास्त्र पारंगत भट्टाचार्य, कर्मकांड के विपुल पंडित चक्रवर्ती और मिश्र, ये भी शास्त्रों का सार या सत्य ज्ञान नहीं जानते थे। शास्त्र के अध्यापन करते हुए भी भौतिकवादी कर्मकांडी ही रह जाते थे। इसीलिए उनका और उनके विद्यार्थियों के गले में यमराज का फांसा निश्चित रूप से कसने लग रहा था। तो यहां पे ये कहना है इनका कि ये जो जो अपने इमीडिएट जिसको बोलते हैं श्रेय और प्रेय जिसको श्रीलंका उगाते हैं कि जो तुरंत जो इंद्रियों को सुख देता है वो चीज करना कि किसका त्याग करके जो चीज बहुत अच्छी है अपनी लॉन्ग टर्म के लिए उस चीज को। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिशेवते तस्य ध्रुवाणी नश्यन्ति अध्रुवम नश्यमेव। जो ध्रुव मतलब ध्रुव क्या है जो कभी भी मरेगा नहीं वो आत्मा हमारा सत्य स्वरूप हमारा आत्मा का स्वरूप आत्मरूप स्वरूप भगवान के अंश होने के नाते भगवान के जैसे ही नित्य मृत्यु से परे रहने की हमारी खुद की स्थिति उस स्थिति को ध्रुव कहा गया निश्चित। अध्रुव किसे कहा गया है शरीर को कहा गया जो नष्ट होने वाला है। तो इस श्लोक में नीति में कहा गया है कि वो ध्रुवाणी परित्यज्य जो आत्मा को छोड़ के अध्रुव परिसेवन अध्रुव का सेवन करते रहे तस्य ध्रुवाणी नश्यन्ति वो तो आत्मा के बारे में कुछ कर नहीं रहा है सोच नहीं रहा है आत्मा को खो देगा। अध्रुव नष्टमेव च अध्रुव का मतलब ही है जो स्थिर नहीं रहता ना तो हमारा शरीर उसका सौंदर्य उसका ज्ञान उसकी संपत्ति कुछ भी नहीं तो शेष रहता है क्या शेष रहता है कुछ भी नहीं रहता है। तो इसी भावना से यहां पे कहा गया कि यमराज का फांसा गले में लटक के खींचे जा रहा है मृत्यु अपनी तरफ खींच रहा है पर लोग क्या कर रहे हैं बेमतलब का अध्रुव चीज के पीछे पड़े हुए ऐसी परिस्थिति थी। यहां पे ऐसे देखा जाए तो इसके बारे में आश्चर्य व्यक्त किया गया है फिर ऐसे किसे मूर्ख हो सकते हैं लोग मनुष्य जन्म में आके इतनी भी समझ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसा है कि यहां पे भाव है। तो इसका मतलब यह है कि आज हमें यह सुनते वक्त अगर नहीं लगता है ऐसा कि अरे इसे आश्चर्य क्या है तो सही मार्ग है लोगों को ऐसा लगता है यही तो मार्ग है जीवन का। तो ये आश्चर्य इसलिए है कि परिस्थिति बदल गई है उस वक्त की परिस्थिति जो है काफी धार्मिक लोग हुआ करते थे यहां पे दिया है उसको धर्म कहा गया तो इससे भी गई गुजरी स्थिति आज है इससे भी बहुत भयावह स्थिति आज है। तो इसलिए शायद ये पढ़ने के बाद बहुत लोगों को लगे इसमें क्या है ऐसा ही तो जीवन होता है। युग धर्म कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन के बारे में चर्चा भी कोई कर नहीं रहा था कोई भी नहीं करता था दूसरे व्यक्तियों के दोष ढूंढना उनकी निंदा करना इसके अलावा लोग अपना मुंह किसी और चीज के लिए खोलने ही नहीं ऐसा देख रहे दूसरे की निंदा देख रहे हैं हम लोग ऐसा हमारे आसपास शायद हमारे हृदय में भी ऐसी मामला है जब भी मुंह खोलते हैं किसी की निंदा ही करते हैं जब भी मुंह खोलते हैं किसी का दोष देखते हैं जब भी मुंह खोलते हैं कुछ कमी देखते हैं छिद्रान्वेषण बोलते हैं हिंदी में छिद्र अन्वेषण मतलब छिद्र को देखना सिर्फ क्या अच्छा है वो ना देखना एक मक्खी की तरह गंदगी पे जाके बैठे तो लोग ऐसे निंदा करने में हमेशा रुचि रखते थे मुंह अपना उसी के लिए खोलते हैं दूसरों की स्तुति और गुणगान करना तो बहुत दूर की बात है ऐसे देखा। तो इसका मतलब उदात्तता दैवी गुण क्या है दूसरों की अच्छाई को देखना और उसका गुणगान करना ना कि बुराई करते रहना। उस वक्त खुद विरक्त सन्यासी और तपस्वी भी अपना यहां पे मराठी है मैं ऑन द स्पॉट हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूं तोरा निर्मित होते हैं क्या बोले इसको वो खुद को बड़ा समझते थे और उनके मुख में भी कभी भी हरिनाम आता नहीं था सन्यासी हो विरक्त व्यक्ति हो तपस्वी हो सिर्फ स्नान करते वक्त गोविंद पुण्य विकाक्ष आदि नाम को उच्चारण करने में ही खुद को पुण्य मान सकते हैं। जैसे पूजा कोई भी विधि विधान करते हैं, वेदी यज्ञ करते हैं, तो हम शुद्धिकरण के मंत्र बोलते हैं, उसमें हम बोलते स्वर कुंडली काक्षुचि कुंडली काक्ष तो ऐसा श्लोक बोलने में ही वो खुद को पुण्यवान समझते थे। ओम केशवाय माम नारायण माधवाय माम गोविंदाय माम, किसी भी पूजा की शुरुआत में हम ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा गोविंद कुंडली काक्ष ये नाम जब एक बार किसी पूजा में बोल दिया तो बहुत हो गया। वो भी श्रीमद भगवदगीता भागवत सिखाने वाले के जिह्वा पे भी भक्तिमय सेवा के उच्चारण के बारे में कुछ भी नहीं आता था। इसमें श्रील प्रभुपाद का हम बहुत बड़ा योगदान समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी जब भगवदगीता का प्रचार किया, भगवदगीता जैसी है वैसी, जैसी है वैसी, एज इट इज जब दिया, तो श्रील प्रभुपाद ने उसमें इंट्रोडक्शन में कहा है कि ये भगवदगीता एज इट इज है। क्यों एज इट इज है? इतनी सारी भगवदगीता हो गई, इतने सारे ट्रांसलेशन है, ये ही भगवदगीता क्यों? तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि एक भी भक्त नहीं बना बाकी की भगवदगीता पढ़ के, ये भगवदगीता पढ़ के भक्त बने, इसलिए ये भगवदगीता सही है। तो भगवदगीता या भागवत इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान के भक्त होना। भक्त होना मतलब भक्तिमय सेवा। श्रील प्रभुपाद भक्तों की भगवान के भक्तों की या भगवान की सेवा करना, ये भक्तिमय सेवा मतलब धर्म है जो भगवदगीता और भागवत में कहा गया। तो इसके विपरीत स्थिति का वर्णन यहां पे आया। भक्तिमय सेवा क्या नहीं है? इसमें भगवान का नाम लेना भी भक्तिमय सेवा नहीं कहलाता है जब तक उसकी भावना सही नहीं, सेवा सेवा भाव जिसको बोलते हैं। हालांकि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, उसी के बलबूते पे हमारा कुछ तो मतलब क्या होप्स बोलते हैं, होप अगेंस्ट होप। प्रभुपाद बोलते थे बेस्ट यूज ऑफ बैड आर्गुमेंट, मतलब जो भी हो कैसा भी हो, हम बोलते हैं ना कभी कभी वो वैदिक विधि में भी होता है, भगवान को सब पूजा अर्चा यज्ञ यज्ञ सब हो गया कि भगवान को प्रार्थना करते कि भगवान हम तो त्रुटि वाले हैं, हमसे ये सामग्री में कुछ त्रुटि रह गई होगी, हमारे विधि में मंत्र उच्चारण में कुछ त्रुटि रह गई होगी, जो भी हो आप देख लो और इस पूजा को स्वीकार कर लो। उसी भावना में हरिनाम हम लेते हैं कि भले ही हम शुद्ध हरिनाम नहीं ले पा रहे हो, पर दूसरा उपाय भी तो क्या है, यही उपाय है शुद्धिकरण का, इसीलिए जो भी है भगवान आप इसे मान लो। तो इस भावना से अगर करेंगे तो श्रीमद् भगवद्गीता भागवत या हरिनाम यहां पे जो वर्णन आया है उसका भक्तिमय सेवा के रूप में परिवर्तन होगा। सब जब माया से मोहित हुआ देख के भगवान विष्णु के भक्तों को बहुत अपार दुख होता है। यही भावना हम श्रील प्रभुपाद की देखते हैं। जब अमेरिका में लोग जाते हैं तो क्या सुंदर है, क्या स्वच्छ है, कितने लोग अच्छे हैं, जेंटलमैन है, जेंटल वुमेन है, क्या तरीका है बोलने, क्या स्वच्छता है, कितनी संपत्ति है, कितनी साधन सामग्री है, कितना आसान जीवन है, कितना अच्छा लोग रह रहे हैं, कितना सुंदर अमेरिका है, ऐसा बोलते हैं। परंतु प्रभुपाद करुणावश बोलते हैं कि किस दुनिया में जी रहे ये लोग, कहां है ये लोग, कैसे उद्धार होगा इनका, कितने भ्रम में है ये लोग, अरे रे रे कितना दुख करो वो कम है, बहुत ही अधिक पतन है, ऐसे श्रील प्रभुपाद। तो भक्त का लक्षण है ये, भक्त कभी भी असूया नहीं करता, भक्त संपत्ति या ज्ञान के पीछे कभी दौड़ता नहीं, उल्टा मराठी मध्ये आम्ही म्हणतो कीम करणे, दुःख करणे, अरे काय मावला गेला, किस मार्ग पे क्या फायदा है, भक्त नाही आहे ठीक, बहुत बेकार जीवन है इसका, मनुष्य जीवन पूरा व्यर्थ किया, मरेगा नरक में जाएगा, कितने साल मिले हैं भक्ति करने के लिए, उस सुवर्ण संधि का, उस सुवर्ण अवसर का लाभ नहीं उठा रहा है, करोड़ों सालों के लिए नरक में जाएगा, क्या फायदा होगा, फिर से घूमते रहेगा, कभी छिपकली हो जाएगा, कभी कॉकरोच हो जाएगा, कभी कोई शेर बन जाएगा, कभी पेड़ बन जाएगा। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए कुछ साल मिले हैं, भक्ति में सेवा के लिए सब कुछ भगवान चैतन्य और संतों ने दिया हुआ है। कितनी दुख की बात है कि ये मेरे पति या ये मेरे पिता या मेरे माता या बच्चा बेटा, ये मेरे रिलेटिव, ये मेरे फ्रेंड्स भक्ति नहीं करते हैं। क्या करें बेचारे, मरेंगे, मुझे दुख होता है इनको देख। ऐसी भावना हो तो चैतन्य महाप्रभु के लिए अवतरण होने के लिए हृदय में परिस्थिति बन रही है। अगर आकर्षण है, वाह उसने क्या कार लिया है, मेरे पास भी होना चाहिए, क्या घर लिया है 3 BHK या 2 BHK, तो इससे भक्ति की साधना शक्तिशाली नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण भी नहीं करते, भौतिक ज्ञान की चर्चा में ही पूरा समय गवाते हैं। सारे भक्तगण, सच्चे भक्त अपनी भक्ति, अपना भक्तिमय कार्य करते रहते थे, भगवान श्री कृष्ण की पूजा, गंगा स्नान, कृष्ण कथा कीर्तन आदि करते रहते थे। सब भक्तगण एक साथ आके सबको, सारे जगत के सारे लोगों का उद्धार हो इसके लिए उनको आशीर्वाद देते थे और उनके लिए प्रार्थना करते थे, हे भगवान, हे कृष्ण, आपकी कृपा सबके ऊपर जल्दी से जल्दी हो जाए। नवद्वीप के सब वैष्णव मार्गदर्शक, सब वैष्णव के मार्गदर्शक लीडर कौन थे, श्री अद्वैत आचार्य थे। वो पूरे जगत में सबसे विख्यात तेजस्वी व्यक्ति थे। एक ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में है उसमें मैंने पढ़ा कि अद्वैत आचार्य नाम सर्वलोक्य धन्य, सर्वलोक्य धन्य यहाँ पे जगत में बोला है, पर उस ट्रांसलेशन में बोला है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रसिद्ध थे अद्वैत आचार्य, इस जगत में नहीं ब्रह्मांड में सबसे प्रसिद्ध थे। ज्ञान वैराग्य भक्ति सिखाने के लिए शिक्षकों में वो सर्वोत्तम शिक्षक थे। श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन करने में वो भगवान शंकर के समान थे। तीनों जगत में, त्रिभुवन में किसी भी शास्त्र के किसी भी परिच्छेद पर चर्चा करते वक्त हरेक श्लोक का स्पष्टीकरण वो करते थे कि सब आध्यात्मिक मार्गों में सर्वोत्तम मार्ग श्री कृष्ण की चरण कमलों की भक्ति में सेवा करना यही है। गंगा जल और तुलसी मंजरी अर्पण करके वो बहुत आनंद से श्री कृष्ण की सेवा बार बार करते रहते थे। श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम के अतिरेक से वो बड़े आवाज में कृष्ण नाम का उच्चारण करके प्रेम का हुंकार करते थे। ऐसे वक्त उनके नामोच्चारण की ध्वनि भौतिक जगत के आवरण को छेद के वैकुंठ जगत तक जाती थी। इसे कहते हैं नाम, हरिनाम। ऐसा हरिनाम करुणावश लेना जो भगवान को सुनाई दे, इतने प्रेम से, इतने करुणा से वो भगवान का नाम लेते थे। इसीलिए वैष्णवों में अद्वैत आचार्य सर्वश्रेष्ठ या अग्रगण्य है और सब जगत के भक्ति मार्ग के सर्वोत्कृष्ट अनुयायी करके प्रसिद्ध है। इस प्रकार अद्वैत आचार्य नवद्वीप में रहते थे और लोगों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति बिल्कुल भी भक्ति ना देखते पूरी तरह से खिन्न हो जाते थे। हरेक व्यक्ति विषय सुख के पीछे पागल हो गया है, पागल हो गया था। श्री कृष्ण की पूजा सेवा करने में कोई भी उत्सुक नहीं था। बहुत सारे लोग अनेक उपहार देके वासुकी देवी यानी दुर्गा देवी की पूजा करते थे। कुछ लोग मांस और दारू का दान देके यक्षों की पूजा करते थे। अलग अलग बाजे बजाते थे, नाचते थे, गाते थे, पर किसी को भी परम पवित्र भगवान नाम सुनने में कोई भी रुचि नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण के संबंधित जो नहीं है ऐसे तथाकथित मंगल उत्सव में भगवान श्री कृष्ण क्या देवी देवता भी प्रसन्न नहीं होते। ऐसे उत्सव लोग मनाते थे ये देख के अद्वैत आचार्य बहुत दुखी होते थे। तो शास्त्रों का कहना है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के या निकाल के किसी भी देवी देवता की पूजा करता है वो अविधि पूर्वक है, प्रॉपर विधि नहीं है। जो भी ऐसे पूजा करते हैं भगवान श्री कृष्ण को समग्र रूप से ना जान के, देवी देवताओं को उनका उनका अंश ना पहचान के, सिर्फ किसी अंग का, देव का, देवी का, देवी की उपासना जो करते हैं, वो देख के अद्वैत आचार्य बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जो कर रहे हैं उनकी सब अविधि पूर्वक है। क्या फायदा है उसका? कृष्ण की संतुष्टि का कोई भी संबंध नहीं है, कृष्ण सेवा का कोई भी संबंध नहीं। क्या होगा? यांति देव व्रतान देवा पितृन यांति पितृण भूतान यांति भूतेज मध्याजी यांति माम। मतलब जो पितरों की पूजा करते हैं, पितरों के पास जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं के लोक में चले जाते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं, भूत प्रेतों के लोक में जाते हैं। परंतु भगवान बोलते हैं मेरी जो पूजा करता है, मेरी जो उपासना भक्ति करता है वो मेरे पास आता है। माम पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमानं। महात्मा किसे कहा गया है? किसी पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड व्यक्ति को नहीं। महात्मा उसे कहा गया है जो भगवान की पूजा, भगवान की सेवा साधना करके भगवान के धाम को प्राप्त होता है, जो नित्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट जाता है, उसे महात्मा कहा। भगवान बोलते हैं कि माम पेत्य, मुझसे मेरी पूजा करके क्या होगा? मेरे पास आओगे जहां पे जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। आ ब्रह्म भुवन आलोक का पुनरावर्ति अर्जुना माम पेत्य तो ब्रह्मते ये पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक किसी भी देवी देवताओं के लोक में चले जाओगे उनकी उपासना करके, तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक में विसंति, आपका पुण्य क्षीण होके फिर से मर्त्य लोक में आओगे। और ब्रह्मलोक को, ब्रह्मलोक तक जितने लोग हैं सारे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। क्या फायदा है? जब आप आपके मनुष्य जीवन में, मनुष्य चेतना में, भक्ति में सेवा धारण करके इतने से समय में, जो भी 30-40 साल हो, 20-25 साल हो, इस समय में निरंतर भगवान के धाम को, नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हो इतने से समय में, उस समय का उपयोग कितना अच्छा करना चाहिए। क्योंकि ये समय चला जाएगा तो बहुत बड़े लंबे समय के लिए प्रॉब्लम में पड़ेगा। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य दुख करते हैं ऐसी पूजा अच्छा देख के, जहां पे लोग सिर्फ भौतिक कामनाओं के लिए अलग अलग देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को समग्र रूप में नहीं देख रहे। ऐसा शास्त्रों में कहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना उनके पार्षदों के साथ, देवी देवताओं के साथ करता है, उस पूजा से ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा नहीं करते थे, तो वो हमेशा, श्री अद्वैत आचार्य हमेशा, उनका हृदय स्वभावतः करुणा से भरा हुआ था। सब जीवों का उद्धार कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, इसकी चिंता उन्हें हमेशा लगी रहती थी। उन्होंने विचार किया कि जब मेरे प्रभु श्री कृष्ण इस जगत में अवतीर्ण होंगे तभी सब जीवों का उद्धार होगा। जब मैं वैकुंठनाथ श्री कृष्ण के दर्शन इस जगत को दिखा सकूं तभी मैं, मेरा नाम अद्वैत सिंह करके सार्थक हुआ ऐसे मानूंगा। मैं वैकुंठपति श्री कृष्ण को यहां अवतार लेने के लिए बुलाऊंगा, गान नर्तन करने वाले उस सुंदर रूप के दर्शन मैं सब जीवों के उद्धार करने के लिए कराऊंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प लेके फिर से एकाग्रचित्त करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे। अद्वैत आचार्य की वजह से मैं इस जगत में अवतार ले रहा हूं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं बारंबार कहते हैं, बार बार कहते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रेम से ही भगवान को बुलाया जा सकता है। हमारी पुकार प्रेम की ना हो, ऐसे सब गुणों से सिंची हुई ना हो, सारी इच्छा भौतिक इच्छाओं से शुद्ध होके निरीक्ष होना, मतलब बिल्कुल ही कोई भौतिक इच्छा ना करना, भगवान की करुणा प्राप्त करने के लिए याचना करना, दूसरों के प्रति बहुत ही करुणा का भाव रखना, ये सब शुद्ध नाम लेने के क्या बोलते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये शुद्ध नाम तभी प्रकट होता है जब अद्वैत आचार्य जैसे गुण हमें आते हैं। तो इन सब गुणों का, इन लीलाओं का वर्णन और श्रवण और कीर्तन इसीलिए हम करते हैं ताकि हम इन गुणों को बहुत पास से महसूस कर सकें, बहुत गहराई से समझ सके, जान सके, अपने हृदय में धारण कर सके। तो चैतन्य महाप्रभु किसके बुलावे पे आए? अद्वैत आचार्य करुणा के बुलावे पे, और उनकी चेतना का दर्शन यहाँ पे चैतन्य भागवत में कराया गया है कि चैतन्य महाप्रभु किसकी पुकार सुन के आते हैं, कब वो दर्शन देते हैं। हम बोलते हैं ना भगवान नाम भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्या हम इसको महसूस कर पा रहे हैं जब हरिनाम लेते हैं? ये साधना का मार्ग हमें उस शुद्धि के स्तर पर जब तक नहीं ले जाता जब तक हमें भगवान चैतन्य का या भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण का उनके नाम में अनुभव नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम विशुद्ध हरिनाम ले रहे हैं। तो इसीलिए इस साधना का मार्ग, इस धर्म का मार्ग प्रस्थापित करने के लिए, सिखाने के लिए, ये धर्म कैसे किया जाता है, कैसे हम इस धर्म को धारण करके सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, इसको प्रकट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ है। तो पुरुषोत्तम श्री भगवान की आज्ञा अनुसार अनेक नित्य मुक्त जीवात्मा इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं और अपना सत्य स्वरूप पूरे जगत से छुपा के वो नवद्वीप में रहते हैं, ऐसा यहां पे आया है। तो यहां पे कहा गया है कि जगत का उद्धार करने के लिए ये सारे पार्षद आते हैं भगवान, और उन पार्षदों की वजह से ही भगवान आते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में भी प्रकट होने हैं तो हमें मार्ग क्या है, उन पार्षदों की, उन भक्तों की, उनकी कृपा के लायक बनना, उनकी सेवा करना, भक्तिमय सेवा का मार्ग यही है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि मैं भगवान का भक्त हूं, हम कहते हैं कि मैं भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों का सेवक होने की कोशिश करते हैं, तभी जाके भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। तो ये सुंदर लीला अद्वैत आचार्य की प्रार्थना हमें ये सिखाती है कि प्रार्थना हमारे लिए कोई करे तो हम चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जैसे महान संत भी, जैसे अद्वैत आचार्य अवतरित हुए, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को इस जगत में बुलाया, उनके बुलावे पे चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, उनके प्रेम की वजह से चैतन्य महाप्रभु खींचते हुए आए, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने भी, हम वर्णन सुनते हैं प्रभुपाद लीलामृत में, श्रील प्रभुपाद ने भी ऐसे ही भक्ति को पूरे जगत में प्रस्थापित किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में यहां पे जब वर्णन आया है तो लिखा गया है कि भगवान चैतन्य ने पूरे भारतवर्ष में हरिनाम का प्रचार किया। जब एक वक्त ऐसा एक डिस्कशन हुआ था श्रील प्रभुपाद का, श्रील प्रभुपाद ने कहा था, बहुत दृढ़ता से कहा था कि चैतन्य महाप्रभु का जो नाम है हर एक नगर और हर एक ग्राम में जाएगा, ये सिर्फ भारत में नहीं होगा, ये पूरी जगत में होगा। श्री श्री राधा मंदिर भगवान की श्री राधा विजय भगवान की जाएगा, तो कौन करेगा? पूरी दुनिया में भगवान का नाम चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन कौन लेके जाएगा? तो श्री प्रभुपाद ने बोला था मैं लेकर जाऊंगा, और वो सत्य हो। तो इसी हरि नाम को हम धारण करेंगे, अभी कीर्तन करेंगे, भगवान के चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का हम अपने हृदय में इंतजार करेंगे, इस शुद्धिकरण की विधि को हम कीर्तन के रूप में अभी